الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس صورت میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور آیات نمبر چل رہی ہیں 88 سے 92 تک، پیج نمبر 138 کے اوپر ہم ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے احکام و ہدایات، معارف و مسائل میں سے ان آیات کے پڑھنے شروع کر دیے تھے. پہلا حکم ان آیات سے پڑھ چکے تھے کہ صدقہ، یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے سید زادے، رائٹ، سید زادے، اس زمانے کے سید زادے تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی سے صدقہ کیوں طلب کیا، تو اس کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایکسپلینیشن دی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والا صدقہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس ان کی شریعت میں نبیوں کی اولاد کے اوپر جو ہے وہ صدقہ ناجائز نہ ہو وغیرہ وغیرہ. آگے ہم چلتے ہیں آج کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ یجزی المتصدقین، تو فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی ایک جزا تو عام ہے، عمومی ہے، جنرل، جو ہر مومن اور کافر کو دنیا میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے رد بلا اور دفع مصائب. یعنی دنیا کی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں صدقہ و خیرات سے، اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، دفع مصائب کا مطلب وہی. تو یہ جو جو جزا ہے، یا یہ جو ریوارڈ ہے نا، یہ تو مومن اور کافر دونوں کو ملتا ہے، اور اسی دنیا میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جزا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جنت، ٹھیک ہے، جنت، وہ بھی آخر میں جا کر کے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ جو قیامت کے دن کی اور میدان حشر کی جو رحمتیں ہیں، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا معاملہ ہے، جو عرش کا سایہ ہے، یہ سب بھی جنت میں تو آخر میں داخل ہوں گے نا، آخر میں جب سب کچھ ہو جائے گا، اس موقف سے اس موقف، اس موقف سے اس موقف، ایک پارکنگ لاٹ سے دوسری پارکنگ لاٹ، دوسری پارکنگ لاٹ سے تیسری پارکنگ لاٹ، گاڑیاں نہیں ہوں گی پارک کرنے کے لیے، لیکن بندے ہوں گے اور بندیاں ہوں گی، ان کو پارک کیا جائے گا پہلے اس لاٹ میں، پھر اس کے بعد اگلی جگہ جاؤ وہاں پہ یہ ہوگا، پھر اگلی جگہ جاؤ وہاں پہ یہ ہوگا. تو ان پارکنگ لاٹس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا معاملہ مومنین کے لیے ہوگا، اور کافرین کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ جو آخرت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جنت اور جنت سے پہلے والے یہ والے معاملات، وہ صرف اہل ایمان کا حصہ ہے، صرف اور صرف اہل ایمان کا. اور یہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں کہ جن کا خاتمہ بالایمان ہوا، دنیا کے اندر جب ان کو موت آئی تھی تو وہ موت ایمان کی حالت میں آئی تھی. اور ایمان کا مطلب کیا ہے، جلدی سے آپ بتا دیں، ایمان کی حالت میں آئی ہوا، ایمان کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ایمان کی حالت میں، ٹھنڈ کی حالت میں آئی تھی، گرمی کی حالت میں آئی تھی، وضو کی حالت میں آئی تھی، نماز کی حالت میں آئی تھی، ایمان کی حالت میں موت آنے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ جواب دیجیے گا جو کہ سب کو پہلے سے معلوم. राइट, कलमे के साथ में होता है ये। अच्छा जी, अगर कलमा ना पड़ा तो फिर ईमान की हालत में मौत। तो मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, इन दी स्टेट ऑफ ईमान। तो ये क्या मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा? तो आपने जो है वो बस एक उर्दू में ही एक दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करके जवाब देने की कोशिश करी है, ये हम आपसे नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, तो ईमान की हालत में मौत का क्या मतलब होता है? देखना ये है कि कौन पे अटेंशन करता है, ये देखना चाह रहे हैं। सही अकीदे के साथ पे अटेंशन कौन करता है, ये देखना चाह रहे हैं। हर वो चीज मानना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर लेकर आए, और उसी तरह मानना जैसे नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। ठीक है ना, ये कहलाता है ईमान की हालत में मौत आना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के ऊपर। और तरीके से मुराद यहाँ पर कोई नबी अलैहिस्सलाम सड़क बना के नहीं गए थे कि उस सड़क के ऊपर मौत आएगी तो ईमान की हालत में मौत कहलाएगी, या तरीक तरीक। आप जाते हैं ना जब हरम में, तो वहां पे वो पुलिस वाले आते हैं, तरीक तरीक, रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ, वो वाला तरीक यहाँ पे मुराद नहीं है। बल्कि क्या मुराद है? सोच का तरीका, हमारी सोच अल्लाह के बारे में क्या वो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई थी या नहीं है, हमारी सोच आखिरत के बारे में वो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई थी या नहीं है, नबियों के बारे में वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी या नहीं है। क्या मतलब नहीं है? क्या यहूदियों की ने जो बातें बताई हैं वो है नबियों के बारे में सोच हमारी, या ईसाइयों ने बातें बताई हैं नबियों के बारे में वो हमें नबियों के बारे में सोच है? ठीक है, या किसी और आइडियोलॉजी ने नबियों के बारे में, एंजल्स के बारे में, रसूल ये फरिश्तों के बारे में, ठीक है ना, क्या फरिश्तों के बारे में कोई ऐसी सोच है जो नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई सोच के खिलाफ है? अगर खिलाफ है तो ईमान की हालत में मौत नहीं आई है, ईमान की हालत में मौत नहीं आई है। ईमान की हालत की मौत का मतलब यह है कि सारी की सारी सोचें, सारी की सारी सोचें हमारे जहन में वैसी ही हो जैसे नबी अलैहिस्सलाम हमें बता के गए हैं, बिल्लाही वो बिल रसूल और वो बिल यौमिल आखिरी वो बिल मलाइकति ही व बिल बासे बादल मौत। ठीक है ना, सब कुछ के बारे में वही सोचो। ठीक है, तो अब सोच की गड़बड़, कल किसी से बात हो रही थी कि बात कैसे ठीक होगी,
कैसे
दुनिया कैसे ठीक होगी, लोग कैसे ठीक होंगे, पाकिस्तान कैसे ठीक होगा, फलाना कैसे ठीक होगा। ठीक है ना, तो इस फकीर ने उनको वही बात फिर से याद दिलाई कि ओ भाई, हमने किसी चीज को ठीक करना होता ना तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा अगर ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाए। ठीक है ना, कुछ भी ठीक नहीं कर नहीं हो सकता, क्योंकि हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, हमारे बस में ही नहीं है कुछ ठीक करना। ठीक है ना, हमें क्या चीज ठीक करनी है जल्दी से बता दें, हमें क्या चीज ठीक करनी है? मुहावरे में जरा, हमारे मुहावरे में किसी उसका जो है वो ठीक कर दूंगा मैं, क्या चीज ठीक करनी है हमने? हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, हमने इसराइल को ठीक करना है, हमने नहीं, सही बात है, हमने अपने अपनी सोच को ठीक करना है, जिसको कि हम स्लैंग में बोले हमें अपना दिमाग ठीक करना है। हमें क्या ठीक करना है? हमें अपना दिमाग, क्योंकि सोच का ताल्लुक इंसान के दिमाग के साथ होता है, हमने और कोई चीज ठीक नहीं करनी है, हम अपना दिमाग ठीक कर लें, बाकी अल्लाह ताला अपना काम करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी दिमाग ठीक करने की लगाई है। ठीक है ना, हमारी जिम्मेदारी दिमाग ठीक करने की लगाई है, तुम अपना दिमाग ठीक करो, बाकी मैं करूंगा, हत्ता कि तुम्हारे आमाल जो है ना, आमाल वो भी मैं ही ठीक करूंगा, तुम्हारे आमाल भी मैं ही ठीक करूंगा, तुम अपना दिमाग ठीक करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी, ये तो तुमसे मैं इस चीज का हिसाब लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, इसकी ये भी मैं ही ठीक करूंगा, यानी इसको कहते हैं तौफीक अता करना, तौफीक मिलना, अमल की तौफीक मिलना, वो सब अल्लाह ताला कर देंगे, हम अपना काम करें और अल्लाह को अपना काम करने दें। हमारे हजरत जब बहुत मसले मसाइल के भी कोई बयान करता है ना हजरत के सामने जा करके, तो अल्लाह हजरत ये फरमाते हैं, अल्लाह को अल्लाह का काम करने दो, तुम अपना काम करो जो तुम्हारे जिम्मे लगाया गया है। ठीक है, तो वो सिर्फ अहले ईमान का हिस्सा है, यानी कयामत के दिन की खैर सिर्फ अहले ईमान का हिस्सा है। यहाँ चूंकि मुखातब अजीज मिस्र है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र से, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं, यूसुफ के भाई जो है वो अजीज मिस्र से, अब उनको क्या पता अजीज मिस्र कौन है, अभी तक तो नहीं पता चला था ना, और बरादरान यूसुफ को अभी तक ही मालूम नहीं था कि ये मोमिन है या नहीं है, इसलिए ऐसा आम जुमला इख्तियार किया जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की जजा शामिल है। ठीक है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो ये बेटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, इन्होंने कितनी गड़बड़े मचाई थी, बाप के साथ भी कैसे बातें कर रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक बुरा सा अंग्रेजी जुबान के मुहावरे आप कहाँ से अच्छे लेकर के आए, अंग्रेजी जुबान के तो फिर बुरे मुहावरे ही होते हैं ना, बेअदबी वाले, ठीक है, लेकिन बात समझाने के लिए खाली बहुत ही डरते हुए मुहावरा इस्तेमाल करना पड़ रहा है यहाँ पे, कि गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू, डेविल को भी अगर कोई उसका हक बनता है ना, उसको वो भी अंग्रेजी जुबान में तो ऐसी इस तरह की चीजें मिलेंगी ना, तो यानी अगर कोई गलत काम कर भी रहा है ना, लेकिन उससे अगर कोई ठीक काम हो जाता है, तो अब ये मत करो कि उसके ठीक काम को जो है ना वो तुम कहो कि नहीं मैं तो इसको इसका नहीं दूंगा, इसको क्रेडिट नहीं दूंगा इसके ठीक काम का, क्योंकि सारे काम जो है वो गलत करता है, भाई जो ठीक काम कर रहा है उसका क्रेडिट तो उसको दे दो ना। ठीक है, तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने और दीगर मुफस्सरीन जो हैं वो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम के उन बेटों को क्रेडिट दे रहे हैं कि देखें इन्होंने कितना ख्याल रखा ईमान का। ठीक है, कि ईमान वाले को जो है ना वो जन्नत की जजा की दुआ जो है वो सिर्फ ईमान वाले के लिए हमने करनी है, जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो ईमान वाला है कि काफिर है, हम उसको अल्लाह ताला की रहमत की के जन्नत की जो है वो दुआएं कैसे दे सकते हैं। ये आज के जमाने का के दीन पर नहीं थे, हमारे जमाने के जो दीन है ना कि भाई वो रियासत अव्वल, राइट, रियासत अव्वल है, तो अब जो है ना वो ईसाई भी अगर रियासत के लिए कुर्बान हो जाता है तो हम जो है वो ईसाई को भी जन्नत की ऊंची ऊंची बशारतें सुनाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई वो उसको अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, आखिर को जो है वो रियासत के लड़ते हुए शहीद हो गया नाउजुबिल्लाह। ठीक है, ये तो फिर हमारा दीन है ना आजकल के जमाने का, ये कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सहाबा कराम के बताए हुए तरीके का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस वाले दीन का जिसके ऊपर आजकल हम अमल पैरा हुए हुए हैं। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं कि इसके अलावा बज़ाहिर मौका तो इस जगह इसका था कि चूंकि अजीज मिस्र से खिताब था, इसलिए इस जुमले में भी खिताब ही के सीगे से ये कहा जाता है कि तुमको अल्लाह ताला जजाए खैर दें, यानी देना तो इस तरह चाहिए था कि अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर दें, लेकिन चूंकि उनका तो मोमिन होना मालूम ही नहीं था, इसलिए आम उनवान इख्तियार किया और खसूसी तौर पर उनको जजा मिलने का जिक्र नहीं किया। ठीक है ना, दे डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क देयर ईमान, राइट, हालांकि पॉलिटिकली करेक्ट अगर सेंटेंस देखा जाता तो भाई इनके दरबार में खड़े हुए हैं और इनसे जो है वो एक्सपेक्टेशन यानी तवक्को लेकर आए हैं कि ये बुनियामीन को भी छोड़ देंगे और जो है वो हमें जो है वो तसद्दक अलैना भी कर देंगे और हमारे पास जो है वो मुजातिन यानी ऐसी जो है वो बेकार किस्म की चीजें पे करने के लिए इनको, उसके बावजूद जो है वो हमें पूरा का पूरा जो है वो सबका दे देंगे, तो अभी तो खूब अच्छी तरीके से मक्खन लगाना चाहिए था, खूब अच्छी तरीके से जो है ना वो सियासी बात यानी जिसको पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स देना कहते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं इस तरह का मामला, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, और हमने ये भी सीखा है अपने बड़ों से, बल्कि बहुत बड़ों से भी सीखा है, इवन अंबिया की भी उससे, ठीक है ना, कि बात ऐसी करो कि जो कि अगले बंदे को इश्तेआल ना दिलाए। कल आज सुबह कुदरतन खवातीन की क्लास के अंदर यही बात भी हो रही थी और ये आयात भी यही है, बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल की जो आयात है, क्योंकि माशाल्लाह यही किताब है हमारे लिए आसानी हो गई, तो उसके अंदर भी नहीं सॉरी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कुल इबादी यकूलु लती हिया अहसन, ए नबी अलैहिस्सलाम आप मेरे बंदों से यानी ईमान वालों से कह दें कि यकूलु लती हिया अहसन के वो वाली बात करो जो कि अच्छी बात हो, इसकी तफसीर में फरमाते हैं इश्तेआल अंगेज बात ना करो, शिद्दत पसंदी वाली बात ना करो, ठीक है, सब्बो शतम ना करो, गालियां मत दो, ठीक है ना, और किसको? काफिरों को। इस आयत का एक जो तफसीर है वो ये है कि काफिरों से बात करने के बारे में बता रहे हैं अल्लाह साहब, कि काफिरों के साथ जो है ना वो अहसन तरीके से बात करो। जैसे कि फिरौन के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, कूलू लहू कौलन लय्यिना, नरम बात करो उनसे, ठीक है? तो मामला तो ऐसा था कि जिसके अंदर खूब अच्छे से नरम बात और पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईमान, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईमान। ईमान का सौदा नहीं कर सकते, ईमान का सौदा नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि ईमान के मुनाफी हो जाए। ये ईमान कोई पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर कुर्बान कर देने वाली चीज नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने इसी तरीके से जो है वो आम उनवान फिर इख्तियार किया और खसूसी तौर पर उनको जजा मिलने का जिक्र नहीं किया। तो यहां पर ये भी जो है वो नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हुदूद का पता है कि जी हमने इस हद को जो है ना वो ट्रांसग्रेस नहीं करना है, अकीदे के मामले को ट्रांसग्रेस नहीं करना है, उसको क्रॉस हमने नहीं करना है, ये लिमिट है, ये हमारी रेड लाइन है, ईमान वाले की रेड लाइन है, ये इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो आजकल के दौर के जो है ना ये सबसे अहम समझने वाली वाला वाला मसला है। क्यों? इसलिए कि पहले भी जैसे आपके साथ बात हो चुकी है, ये फितने दज्जाल का जमाना है और इसके अंदर इस्लाम को इंटेलेक्चुअल फताह नसीब हो चुकी है, इंटेलेक्चुअली, ठीक है ना? और डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी अगर देखा जाए, ठीक है ना, इस्लाम को जो है वो इस वक्त फताह नसीब हो चुकी है और काफिरों को जो है वो इंटेलेक्चुअली शिकस्त नसीब हो चुकी है, ठीक है ना? इंटेलेक्चुअली शिकस्त नसीब हो चुकी है, फिजिकली शिकस्त नसीब नहीं हुई। उनके इलाके जो है वो उनके पास हैं, बल्कि हमारे इलाके भी उनके पास, ठीक है ना? हमारे मुल्क भी उन्हीं के हवाले, उन्हीं के पास है। हम मुल्कों की बात ही नहीं कर रहे, हम जो है वो जमीन की बात ही नहीं कर रहे, हत्ता कि हम तो जिस्मों की भी बात नहीं कर रहे, इंटेलेक्चुअल फतह की बात कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में इंटेलेक्चुअल फतह नसीब हुई थी, ना तो झंडे गाड़े गए थे हिंदुस्तान में, ना झंडे गाड़े गए थे यूरोप में, ना अफ्रीका में, अफ्रीका यूरोप और हिंदुस्तान तो दूर की बात, पर्शियन एम्पायर के अंदर भी झंडे नहीं गाड़े गए, राइट? ना फारस में झंडे गाड़े गए, ना रोम में झंडे गाड़े गए, तो फिर फतह, राइट? फतह मुबीन भी हो रही है, और जो है वो इजा जा नसरुल्लाह वल फतह भी अल्लाह ताला की तरफ से आयात नाजिल हो रही है, फतह आ जाए। हमारी फतह तो होती है झंडे गाड़ना, नबी अलैहिस्सलाम को कौन सी फतह मिल गई थी, राइट? अरेबिया, छोटा सा अरेबियन पेनिनसुला जिसमें वैसे ही रेगिस्तान की वजह से इतनी कम पॉपुलेशन थी इस इलाके की, जिनको के लिजर्ड ईटर्स लोग कहते थे, कोई घास नहीं डालता था यहाँ के रहने वालों को, राइट? ये छिपकर ही खाने वाले लोग हैं, इनके पास क्या करना है जा करके, हमें उनमें फतह हासिल हो गई। कौन सी फतह भाई? इंटेलेक्चुअल फतह हासिल हो गई थी, ठीक है ना? तो इस जमाने के अंदर भी इस्लाम को इंटेलेक्चुअल फतह हासिल हो चुकी है। तो जब फतह हासिल हो जाती है और दूसरे लोग जो है वो नाकाम हो चुके होते हैं, तो अब वो इंटेलेक्चुअल गोरिल्ला वॉर के ऊपर उतरे, इंटेलेक्चुअल गोरिल्ला वॉर, फिजिकल गोरिल्ला वॉर नहीं, क्योंकि सारे एटम बम, सारे मिसाइल, सारे जो है ना टेक्नोलॉजी और सारे जो है वो स्पेस प्रोग्राम सारे उनके पास हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है? इंटेलेक्चुअल फतह है, ठीक है ना? और ये क्या है इंटेलेक्चुअल फतह, कैसे करेगा, अलग तफसील है, वो आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर आप कोशिश करें जरा और डालने की अपने दिमाग शरीफ के ऊपर, खुद भी समझ में आ सकती है, लेकिन बहरहाल अभी हम इसमें नहीं तफसील में जा रहे हैं। तो अब जो है वो गोरिल्ला वॉर पे उतरे हुए, अब वो गोरिल्ला वॉर क्या है? घुस करके हमला करना, छुप करके हमला करना, अपने एजेंट्स अंदर भेजना, अपने एजेंट्स अंदर भेजना, और इस इंटेलेक्चुअल फतह को इंटेलेक्चुअल शिकस्त में तब्दील करना, जहनी फतह को, सोच की फतह को, सोच की शिकस्त में तब्दील करना। तो सोच की फतह क्या थी? अकीदे सेट हो गए। सोच की शिकस्त क्या होगी? अकीदे खराब कर दो, इनका दीन खराब कर दो, इनका दीन खराब कर दो। अब इसके लिए जो है ना वो यानी हम तो तस्वुर नहीं कर सकते, हमारी तो इतनी पहुंच ही नहीं जाती ना सोच की, कि हम अपनी क्या प्लानिंग करेंगे, कि हम तो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते कि हमने क्या करना है, दूसरे की प्लानिंग वो हमारी क्या समझ में आएगी, ठीक है ना। हमारी सोच तो इंतहाई सुपरफिशियल है, इंतहाई सुपरफिशियल है, कोई गहराई नहीं हमारी सोच के अंदर, समझ में नहीं आती हमारी कोई बात। तो अब कोई बैठ करके 30 30 साल 50 50 साल पुरानी हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है, हमें क्या खाक समझ में आएगा कि उसने क्या प्लानिंग करेगी, कैसे जो है वो अपने बंदे प्लेस किए हुए हैं, कैसे जो है वो अपने, वो तो अल्लाह का, अल्लाह भला करे कुछ लोगों का जिन्होंने वो कायदे आजम के नाम के साथ एक स्टोरी लगा दी, हालांकि वो स्टोरी कायदे आजम के नाम वाली स्टोरी नहीं है, वो तो एक नवाब साहब थे इंडिया के, सुना है ना सबने इंशाल्लाह, अब तक तो पढ़ लिया होगा, बहुत वायरल हुई थी, और ये हकीकत है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, हमने उलमा, बड़े उलमा से भी कंफर्म किया इस बात कि वो जो यूके गए थे, उनके मुलाजिम ने उनको बुलाया था नवाब साहब को, और मुलाजिम ने कहा मैं आपको ले जा करके एक जगह दिखाता हूँ और आप वहाँ पे खामोश रहिएगा और भेस बदल करके हमारे साथ हम जाएंगे, और वहाँ पे जो गए थे तो उन्होंने रिसर्च सेंटर्स देखे थे, रिसर्च सेंटर्स, और ये कब की बात है, ये कम अज कम 1947 से पहले की बात है ये, ठीक है। तो जितना रिसर्च और जितनी उन्होंने इसके ऊपर सोच लगाई है, और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा फिर उसके ऊपर इस सोच को जो प्लान किया है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया है, तो वो बहुत बहुत गहरी चीज है, ठीक है ना। और मकसद क्या है सारा का सारा, इंटेलेक्चुअल फतह को इंटेलेक्चुअल शिकस्त में तब्दील करना, ठीक है। तो इसी वजह से ना आज जो है वो हम किस चीज से नबरत आजमाएं या किस चीज से हमें डील करना पड़ रहा है, अमाल की हिफाजत नहीं, ईमान की हिफाजत है ना, बिल्कुल आखिरी, यानी हम जो है ना वो, यानी उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जैसे कि कोई पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ है, जरा सा उसको टिप करो, जरा सा उसको जो है ना वो हल्का सा भी अगर फूंक भी मार दो ना, वो नीचे गिर जाएगा। हमारे ईमान का इस वक्त ये हाल हुआ, हमारे ईमान का इस वक्त ये हाल हुआ है, और हमें एब्सोल्यूटली, मजे की बात बल्कि सबसे दहशतनाक बात इसके अंदर ये है, वी हैव एब्सोल्यूटली नो रियलाइजेशन, एब्सोल्यूटली नो केयर, हम इसको मानने से, तस्लीम करने से ही बिल्कुल मुनकिर हो चुके हैं, बिल्कुल इनकार, बिल्कुल इन द स्टेट ऑफ डिनायल, कंप्लीट डिनायल, कि नहीं जी हम, कोई मसला नहीं है, मैं तो इतने उमरे करता हूं, मैं तो इतने जो है वो सदका खैरात करता हूँ, मैं तो इतनी इबादतें करता हूँ, मैं तो इतना जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी पढ़ता हूँ और फेसबुक के ऊपर भी पढ़ता हूँ, और न जाने और किस किस में शेख की और किस किस जो है वो आलिम की तकरीर भी सुनता हूँ, राइट। मुझे, मेरे ईमान को क्या हो सकता है, और मेरे बच्चों के ईमान को, मेरे बच्चों को तो शैतान ने वैसे भी मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं सारी दुनिया को बहकाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को तो मैं हरगिज नहीं बहकाऊंगा, राइट। तुम्हारे साथ तो मेरा खास ताल्लुक है ना, तो ऐसी बात है फिर तुम्हारे बच्चे जो है वो मेरे बच्चे हैं, कहते हैं ना कि आपके बच्चा मेरा बच्चा, मैं आपके बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारा भी शैतान के साथ ये जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ है, इसी वजह से अपने औलाद के बारे में, और हम बेफिक्र अपने अपने से ज्यादा बेफिक्र अपनी औलाद के बारे में बेफिक्र, ठीक है। दिस लिखा है इन्होंने कि दिस स्टेट ऑफ डिनाइल इटसेल्फ इज ए साइन दैट द अदर साइन दैट द अदर साइड हैज डन इट्स वर्क, एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स, उसने अपना ये काम ऐसा कर दिया है कि हमें बिल्कुल स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर डाल दिया, तो वो यानी अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा कामयाब है, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना वो ये वाला मसला है जिसको कि प्लूरलिज्म भी कहते हैं, ऑल इंक्लूसिवनेस भी कहते हैं, राइट। इसको पेरिनियलिज्म भी कहते हैं अंग्रेजी में, एक नया पता नहीं कहां से वर्ड लेकर के आ गए, पेरिनियलिज्म होगा दायरे, पुराना वर्ड हमारे लिए नया था, ठीक है। तो अब जो है वो हम बड़े खुश, ओ हो सब जो है वो अब फलस्तीन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, वाह 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 वाह, और जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है वो खड़ी होकर के जो है वो उनको गालियां दे रही हैं, कोई खातून खड़ी होकर के, अल्लाह के बंदे कुछ कुछ पता भी है ईमान का, कुछ पता भी है अकीदे का है? नहीं, बस है? बस जो है वो दुश्मन को, जिसको हम समझते हैं दुश्मन, उसको हमने गालियां दे दी, जिसने भी गाली दी वाह 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 वाह, तालियां बजाओ भाई उनके लिए, और उनको अपना कंधे पे बिठाओ, उनको अपने कंधे पे बिठाओ जिसने दुश्मन को जो है वो ललकार दिया, ठीक है ना। तो इस कुछ क्यों है, क्योंकि वी हैव एब्सोल्युटली नो क्ल्यू व्हाट ईमान इज, वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट ईमान इज। ठीक है, तो भाई ईमान जो है ना, ये सीखने की चीज है, इसको समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है, और फिर ये कैसे दुश्मन आकर के, डाकू जो है ना वो ईमान का, वो कैसे इसको लूटता है और उससे हिफाजत करने का क्या तरीका है। क्या लिखा है उन्होंने, आजकल जैसे हर शख्स ही अल्लाह और नबी का जिक्र की बात करता है, अखलाक की बात करता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म तोड़कर, जैसे वो खातून की वीडियो की एग्जाम्पल है। जी हाँ, ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम गेम, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, चले, अल्लाह ताला हम सब की ईमान की बात फरमाए। दुआ से बात शुरू होती है, ईमान वाला जो है ना वो अपने हर काम को, अपनी हर फिक्र को दुआ से शुरू करता है, लेकिन दुआ उसी वक्त कर सकता है, दुआ उसी वक्त किसी चीज के लिए कर सकता है जब उसको फिक्र हो उस चीज की। जिस चीज की फिक्र नहीं है ना, उसके लिए दुआ जो होती है वो एक ढकोसला होती है, खाली फेक दुआ होती है। आपको फिक्र ही कोई बात नहीं है, आप किस चीज को अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। ठीक है, तो फिक्र पैदा करना दुआ से भी पहले जरूरी है, दुआ से भी पहले जरूरी है। प्री रिक्विजिट फॉर ए गुड दुआ इज फिक्र। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि इस तदमन्नल्लाहु अलैना से साबित हुआ कि जब इंसान किसी तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार हो और फिर अल्लाह ताला उससे निजात अता फरमाकर अपनी नेमत से नवाजे, तो अब उसको गुज़श्ता मसाइब का जिक्र करने के बजाय अल्लाह ताला के इस इनाम व एहसान ही का जिक्र करना चाहिए जो अब हासिल हुआ है। मुसीबत से निजात और इनाम इलाही के हुसूल के बाद भी पिछली तकलीफ और मुसीबत को रोते रहना नाशुक्री है। ठीक है, बरादरान यूसुफ को मोमिन होना मालूम ना था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का आपके नबी होने का उस वक्त तक मालूम ना था। जी, इस आयत तक मालूम ना था, इसके बाद मालूम हुआ ना। ठीक है ना, इसके बाद मालूम हुआ, तो अब तक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को आपके नबी होने का उस वक्त तक कंफर्म मालूम तो नहीं था ना। हाँ, उनके जहन में एक खटका तो था कि वो जो ख्वाब आया था, तो उस ख्वाब की कोई ना कोई बड़ी ताबीर तो है होने वाला, बुला देते ना इसको, तो भूले हुए थे इतने अरसे, जब भी तो वो उठा करके कुएं में फेंक करके आ गए, और जो है वो वालिद साहब के साथ जो है वो झूठ बोल रहे हैं और ये सब कुछ। ठीक है, तो शैतान जो है वो बुला देता है, कुछ चीज हमें पता भी होती है, वो भी फिर हमारे हमारे इल्म यानी हमारे फायदे का नहीं होता, हमारा इल्म हमें फायदा नहीं दे रहा होता। ठीक है, अगर शैतान से हिफाजत ना की जाए ना, तो इल्म, और इतना सही इल्म और इतना बड़ा इल्म कि अपने घर में जो है वो एक नबी के होने का, कि कोई मामूली इल्म है कि हमारा भाई जो है वो नबी बन सकता है, नबी होगा, ये इतना बड़ा इल्म उनको हासिल हो गया था, लेकिन शैतान से हिफाजत नहीं थी, कोई फायदा नहीं हुआ इसे उनका। ठीक है, जलील भी हुए, गुनाह भी किए, रुसवा भी हुए, मुश्किलात का शिकार, सब कुछ हुआ। फिर तो कद मन्नल्लाहु अलैना की तफसीर के अंदर हजरत फरमा रहे हैं कि ये नाशुक्री है कि भाई आपके ऊपर अल्लाह ताला ने नेमतें कर भी दी, अब जो है वो रोए चले जा रहे हैं बीवी। तो ऐसे ही नाशुक्र को कुरान अजीज में कनूद कहा गया है। ठीक है, वल आदियाति सुबहन वाली सूरत के अंदर है ना ये, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। कनूद कहते हैं उस शख्स को जो एहसानात को याद ना रख। ठीक है, घोड़ों की मिसाल दे कर, घोड़ा जो है ना वो अपने मालिक का वफादार होता है, कितनी मुसीबतों में मुबतला होता है, उसको यानी पानी भी नहीं मिल रहा होता, उसको खाना भी सही तरह से नहीं मिल रहा होता, और नेजों और तीरों और यानी मैदान जंग के अंदर जो है वो, लेकिन वफा नहीं छोड़ता, पीड़ फीर के फेंक करके ना अपने मालिक को उछाल दे, मालिक की क्या हैसियत है, इतना हल्का सा घोड़े के नजदीक एक इंसान की कितनी ताकत हो सकती है। वो उधर जो है ना वो एक लात मारे अपने अपने सवार को और भागे वहां से, तो भाई मुझे मेरी जान ज्यादा अजीज है, तुम जाओ अपना लड़ना है तो मैं तो पीछे बैठा हूँ, तुम जाओ जाकर के, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़े, जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम को कहा था। तो घोड़े साहब जो है वो अपने मालिक साहब को ही नहीं कह सकते, लड़ो तुम जा करके, मरो तुम तो वही इंसान भाई, लेकिन नहीं करता, वफादारी निभाता है। ठीक है ना, उस के तस वल आदियात ضبحا فنوحان لربك, यानी तसव्वुर करें ना अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितना दुख होता होगा कि तुमने इस घोड़े के लिए करा क्या था जो कि तुम्हारा इतना वफादार है? और मैंने तो सब कुछ किया तुम्हारे लिए, जो कुछ तुम्हारे पास है सब का सब मेरा दिया हुआ है। ठीक है, वॉइस ब्रेकिंग कह रहे हैं, किसी और कोई मसला है वॉइस के साथ बता दें। परवरदिगार ने तो हमें सब कुछ दिया है जो कुछ है, ठीक है, और हम परवरदिगार के नाशुक्र हैं, हम परवरदिगार के जो है वो यानी बेवफाई करने वाले, हर एक के साथ वफा करेंगे लेकिन परवरदिगार के अलावा, राइट। इतने इतने दीनदार बन जाते हैं लेकिन फैमिली नाराज ना हो जाए कहीं, राइट, और जो है वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली नाराज ना हो जाए, ठीक है। अल्लाह नाराज होता हो, रसूल नाराज होता हो, यार क्या हो गया यार, कौन सी बड़ी बात है यार, सभी करते हैं नाराज, तो मैंने भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है ना, बिल्कुल ठीक है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, उस शख्स को जो एहसानात को याद न रखे, सिर्फ तकलीफों और मुसीबतों को याद रखे। तकलीफों और मुसीबतों को याद रखने का मतलब क्या होता है कि आप बेवफाई कर रहे हैं ना, इतनी नेमतें आपके ऊपर हैं लेकिन आप उनका जिक्र करने के बजाय, उनका शुक्र अदा करने के बजाय जो है ना, जो आपके ऊपर एक दो भी मुसीबत आई, बड़ी आई हो या छोटी आई हो, आप इसका तस्करा करे चले जाते हैं। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के अमल से अरसे दराज तक जिन मुसीबतों से सबका पड़ा था उनका उस वक्त कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ला शानहु के इनामात का जिक्र फरमाया, ही का जिक्र फरमाया। सब्र और तकवा हर मुसीबत का इलाज है। तो ये जो आयत है, इन्नहु मैयत तकी व यस्बिर, यानी जब उसको हम अपने लैंग्वेज में कहें भांडा फूट गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो फिर से एक उसूल बयान फरमा रहे हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बयान फरमा रहे हैं, इन्नहु मैयत तक्व यस्बिर। मन का जो लफ्ज है ना, ये उसूल फिका के अंदर पढ़ेंगे तो ये आम के लिए इस्तेमाल होता है, उमूम के लिए, जो भी सबर करेगा और जो है वो तकवा इख्तियार करेगा। इससे मालूम हुआ कि तकवा यानी गुनाहों से बचना और तकलीफों पर सब्र सबात कदम, ये दो सिफतें ऐसी हैं, यानी सबर करना और कदम को साबित कदम रखना अपने आप को, ये दो सिफतें ऐसी हैं जो इंसान को हर बला व मुसीबत से निकाल देती हैं। कुरान करीम ने बहुत से मौके में इन्हीं दो सिफतों पर इंसान की फलाह व कामयाबी का मदार रखा है। इरशाद है, वह इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, यानी अगर तुमने सब्र तकवा इख्तियार कर लिया तो दुश्मनों की मुखालिफाना तदबीरें तुम्हें कोई गजंद और नुकसान ना पहुंचा सकें। शहादतें नहीं होंगी तुम्हारे अंदर, क्या मतलब, नहीं शहादतें तो होंगी क्योंकि शहादत तो तुम्हारे लिए मकसूद मोमिन है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। तो पर यहाँ पे तो ना तो माल गनीमत मिलता है मोमिन को, ना किश्वर कुशाई मिलती है और शहादत मिलती है, तो यहाँ पे हजरत कौन सी वाली मुखालिफाना तदबीरें जो है वो तुम्हें, हजरत तो क्या मतलब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इज्तिमाही तौर पर जो है ना वो तुम ही कामयाब हो गए, इनफरादी तौर पर तुम्हें शहादत भी मिल सकती है, इनफरादी तौर पर जो है वो तुम्हें किश्वर कुशाई ना मिले, ना मिले, ठीक है ना, तुम में से कोई गरीब रह जाए, तुम में से कोई जो है वो कुर्बानी देने वालों में से बन जाए, ठीक है, लेकिन इज्तिमाही तौर पर जो है ना वो दुश्मन की मुखालिफाना तदबीरें तुम्हें कोई गजंद और नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, ठीक है। लेकिन शर्त है ये यानी जुमला शर्तिया है, ये मशरूत बात है, ठीक है, ये कामयाबी दुनियावी कामयाबी है या आखिरत की कामयाबी नहीं, यहां पर जो है ना ये इज्तिमाई दुनियावी कामयाबी, इज्तिमाई दुनियावी कामयाबी, ठीक है, तो ये दुनियावी कामयाबी है लेकिन इज्तिमाई शक्ल में, यानी तुम्हारी जमात को कामयाबी मिलेगी। इनफरादी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के कितने सहाबा थे जो कि शहीद हो गए, कितने सहाबा थे जो कि जख्मी हो गए, राइट, तो नबी अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली कि नहीं मिली, ठीक है ना, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जमात की शक्ल में, और वो भी हम यानी वो भी हम जो है वो अभी थोड़ी देर पहले क्या बात कर चुके हैं कि वो कामयाबी झंडे गाड़ना जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इधर झंडा गड़ जाएगा तो ये भी तुम्हारा मुल्क फतह हो जाएगा, वो भी मुल्क फतह हो जाएगा, ठीक है ना, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें इत्मीनान और सुकून अता फरमाएंगे, तुम्हारी जो है वो तुम्हें खौफ से निजात अता फरमाएंगे, जुअ से निजात अता फरमाएंगे, खौफ से निजात अता फरमाएंगे, अमन व सलामती अता फरमाएंगे, ठीक है। और तुम्हें इंटेलेक्चुअल फतह, जहनी और सोच की फतह अता फरमा देंगे तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर। ठीक है, तो ये जो दुश्मनों की तदबीरें हैं ना, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। उम्मीद है कि ये बात हम समझ चुके होंगे और याद रखेंगे इसको, कामयाबी से क्या मतलब। ठीक है, लेकिन अब हमारा मसला क्या है कि हम कामयाबी तो चाहते हैं, बल्कि चाहते क्या हैं, डिमांड करते हैं, और हम डिमांड करते हैं कि हम हमारा दुश्मन जो है ना वो नाकाम हो जाए। तवक्को है, डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है दुश्मन की नाकामी की, दुश्मन जो है वो कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन ना तो सब्र करना है और ना तकवा इख्तियार करना, ना सब्र करना है, ठीक है ना, और ना जो है वो तकवा इख्तियार करना है। तो फ्री में मिल जाए कामयाबी, इंटेलेक्चुअल कामयाबी भी फ्री में मिल जाए, और जो है वो खौफ से यानी मुआशी तंगियां भी फ्री में दूर हो जाएं, राइट, और जो 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 सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी फ्री में दूर हो जाएं, लगे रहो उनके दुम में, उनके पीछे पीछे भागते रहो, अल्लाह को नाराज करते रहो, अल्लाह की नाफरमानी करते रहो, तुम्हारी औरतें ना पर्दा करें, तुम्हारे मर्द जो है ना जो है वो हराम खोरी से जो है वो बाज आए, ना जो है वो जुल्म से बाज आए, ना किसी और से बाज आए, है ना, बस जो है वो नारे लगाए थे, है कलमे पर जो है वो मुल्क बनाया था और 6 लाख जो है वो रास्ते में शहीद हो गए थे, तो इस वजह से जो है ना बस कामयाबी जो है वो हमारी मुकद्दर है। ठीक है, मिल के रहेगी, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ये तमाशे और ये ड्रामे जो है ना ये नहीं चलते, आज तक भी नहीं चले, इंशाल्लाह आगे भी नहीं चलेंगे। तौबा करेंगे तो फिर ठीक होगा, वरना उसके बगैर नहीं होगा। ठीक, तो हमारा इस वक्त जो मसला आया है ना, इस वक्त अगेन कमिंग बैक टू द मेन प्रॉब्लम अगेन, वो ये है कि इस वक्त हम एक ऐसी अफ्यून ज्यादा हालत में आ चुके हैं। अफ्यून समझते हैं ना, यानी ड्रग्ड, ठीक है, ड्रग्ड हालत के अंदर आ चुके हैं। हमें ऐसे जो है ना वो इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, बल्कि हमने लगवा लिए हैं, है ना, जैसे जैसे वो क्या कहते हैं वो, अभी क्या था भाई, कोविड वैक्सीन, तो हमने वैक्सीन लगाई है। किसकी वैक्सीन? ये ताकि हम यानी क्या कहते हैं क्या था वो, लगे दम मिटे गम, राइट, तो हमें दम लग चुके हैं और हमारे गम मिट चुके हैं। अब मसला ही कोई नहीं है, आप कौन सी वाली मुसीबत की बात कर रहे हैं भाई, जिससे निकलने के लिए हम तकवा अख्तियार करें, जिससे निकलने के लिए हम गफ, हम तो भाई बड़ा एवरीथिंग इज सो ग्रेट, ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है माशाल्लाह, खाने की कमी है, कोई कोई भूखा मर रहा है ना माशाल्लाह, रेडियो एक्टिव गजाएं वाफिर मकदार में मौजूद हैं, एक एक गंदम की बाली के ऊपर जो है वो 700-700 जो है ना वो दाना निकल रहा है, और छोटे छोटे जो है वो पौधों के अंदर पूरी पूरी जो है वो फसल आ जाती है, और जो है वो एक साल में पहले एक फसल आती थी, अब एक साल में 3 फसलें आती हैं, इतना खाना कोई भूखो नहीं मरता, इतना पीना माशाल्लाह, एक से एक जूस मौजूद हैं, एक से एक हर वक्त मार्केट में नए नए जूसेस आते रहते हैं, है ना, मराई का जूस आ रहा है, तो नादिक का जूस आ रहा है, तो पता नहीं और कौन कौन से जूस आ रहे हैं, और पाकिस्तान तक इम्पोर्ट हो रहे होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, और जो है वो बाकी वो पानी बिजली, इसके तो हम वैसे ही आदि हैं, यू नो हाउ टू डील विद दैट, राइट, हम तो इसके आदि हो चुके हैं, पानी बिजली के मसले तो कोई कोई नया मसला हो गया, बाकी जो है वो चोर वो तो हर जमाने में होते ही हैं, और किसी को मार दिया हमें क्या भाई, हमारे घर में कोई थोड़ी चोर डाकू आया है, हमारे घर में कोई थोड़ी किसी की इज्जत टूटी गई है, हमारे घर में कोई थोड़ी जो है वो कोई कत्ल हुआ है, ठीक है ना, तो भाई सब ठीक है, एवरीथिंग इज ग्रेट, हमारे यहाँ इल्म की जो है वो आप तलब देखें माशाल्लाह, पहले जो है हम रोते थे यूनिवर्सिटियां नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अब देख लो हर कोने कोने पर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, पीएचडी कर रहे हैं लोग, दवा करके पीएचडी हो रही है, ठीक है, और जो है वो मर्द तो मर्द, औरतें जो है वो माशाल्लाह इल्म की जो है वो सारी की सारी यानी एवरेस्ट पहाड़ जो है वो अबूर कर रही है, तालीम है, अभी किसी का इंटरव्यू आपको भी सुनाया था कुछ लोगों को, है? पैदा होने से पहले स्कूल के अंदर एडमिशन करवा रहे होते हैं, इल्म की तलब, राइट, तालीम की फिक्र, इल्म की तलब, तो भाई मसला क्या है जिसकी वजह से आप हमें कह रहे हैं कि थबर अख्तियार करोगे, तकवा अख्तियार करोगे तो मसले से बाहर निकलोगे, हम तो मसले को ही नहीं देख रहे, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा कोई मसला है, राइट, और बाकी जो है वो तो होता है, इट्स बिजनेस एज यूजुअल। तो हमें ऐसी वैक्सीन लग चुकी है, हमने लगवा ली है, जिसको कहते हैं डेट ऑफ कंप्लीट डिनायल, स्टेट ऑफ कंप्लीट डिनायल, ठीक है। तो तरीका यह है कि भाई पहले तो अपने मसले को मसला समझे कि मसला है कोई, एवरीथिंग इज नॉट नाइस एंड कूल, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट नाइस एंड कूल, पहले तो इसको तस्लीम करें ना। जब ये तस्लीम करेंगे फिर परवरदिगार की तरफ शायद नजर उठ जाए, और शायद जो है ना परवरदिगार से ये दुआ जो हमारे बेचारे बुजुर्ग हमें समझाते रहते हैं, बुजुर्गों की बताई हुई दुआ है, गालबन हदीस में तो नहीं है ये, लेकिन हमारे हजरत ने भी बुजुर्गों को नकल करते हुए दुआ बताई, अल्लाहुम्मा फिरले ज़म्बा, ए अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ कर दीजिए, अल्लज़ी तसल्लत बिही अलैया हाज़ा, कि जिसकी वजह से फलाना शख्स या फलानी मुसीबत मेरे ऊपर आपने मुसल्लत की हुई है, उस गुनाह को आप माफ फरमा दीजिए, यानी मेरे गुनाह की वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत मुसल्लत हुई भी है। ये हमारे बड़ों की सोच ये है, लेकिन हमारी सोच क्या है, मुसीबत ही कोई नहीं, मैं कौन से वाले जो है वो मुसीबत को टालने की जो है वो दुआ मांगू, और वो भी अपने गुनाह, अपने गुनाह कि मैंने कौन सा गुनाह किया है भाई। अगर कोई मुसीबत है भी, जैसे बहू के ऊपर सास की मुसीबत, सास के ऊपर बहू की मुसीबत, तो वो मेरे गुनाहों की वजह से थोड़ी है, वो तो सास के गुनाह की वजह से है कि वो मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है, ठीक है ना। यानी जो मुसीबत बनता है वो उसका गुनाह है कि वो मेरे ऊपर मुसीबत बना हुआ है। मिसाल के तौर पर इसराइली जो है वो फलस्तीनियों के लिए मुसीबत बने, तो इसराइलियों के गुनाह है ना भाई, फलस्तीनी ने कौन सा गुनाह कर लिया भाई। बिल्कुल वही मामला हमारे घरों के अंदर भी है, हमने कौन सा गुनाह कर लिया जिसकी वजह से मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है। जो मुसीबत ला रहा है उसमें, यानी सियासतदान ने मुसीबत, सियासतदान के गुनाह है जिसकी वजह से हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, ठीक है ना। फौज जो फौज के खिलाफ हो रहे हैं वो फौज के गुनाह है जिनकी वजह से हमारी मुसीबत बनी हुई है, जो किसी के भी खिलाफ हैं वो उसके गुनाह है जिसकी वजह से हमारी मुसीबत बनी हुई है। बिल्कुल सोच उलट गई, बिल्कुल सोच उलट गई, ठीक है। तो भाई असल में तो सोच ये है, अल्लाहुम्मा फिर लिज़म्बल्लज़ी तसल्लत बिही अलैया, तसल्लत बिही अलैया। आगे बस ये पैराग्राफ पढ़ के फिर खत्म करते हैं, क्लास का टाइम एक्चुअली 2 मिनट ऊपर हो गया है। फरमाते हैं कि यहाँ बज़ाहिर ये दावा मालूम होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुत्तकी और साबिर होने का इद्दआ कर रहे हैं, यानी दावा कर रहे हैं, दावा क्लेम, तो हमारे के हमारे सब्र और तकवा की वजह से हमें मुश्किलात से निजात और दरजात दरजात में आलिया नसीब हुए, ठीक है। मगर किसी को खुद अपने तकवे का दावा करना बिनस कुरान ममनू है, यानी कुरान मजीद की बाकायदा नस से ये मना है कि तुम अपने तकवे का दावा ना करो, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, यानी अपनी पाकी ना जतलाओ, अल्लाह ही ज्यादा जानता है कि कौन मुत्तकी है। मगर यहाँ दर हकीकत दावा नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमा है, तहदीस बिन नेमा का मतलब होता है कि नेमत का जिक्र कर, और अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र है कि उसने अव्वल हमको सब्र व तक्वा की तौफीक अता फरमाई, फिर उसके जरिए तमाम नेमतें अता फरमाई, ठीक है। अगर टाइम होता तो हम आपसे पूछते कि क्यों कर रहे हैं भाई इतना उनके हक में, कोई और ऐसा बात करेगा तो आप कहेंगे कि डेंगियां मार रहा है, ठीक है, और अपने आप को जो है ना वो पारसा जतला रहा है, और जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बात कर रहे हैं तो फिर इतना इनको मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह को क्या तकलीफ हुई हुई है कि वो उनके हक में जाके दलायल दे रहे हैं। तो इसका उसूल जो है वो जुमे की मजलिस के अंदर भी समझाया था, और पहले भी कई दफा जो है उसकी बात हो चुकी है कि जब कोई ऐसा शख्स कोई ऐसी बज़ाहिर ऐसी बात करे जो कि गलत है, नस्से कुरानी के खिलाफ है, ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं, नस्से कुरानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्या आप बात को सही कह देंगे, हाँ बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम माशाल्लाह, अब से जो है ना वो हम कुरान के नस को साइड पे रखेंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की इत्तबा करेंगे, क्योंकि कुरान कहता है फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, हम कुरान के उस वाले हुक्म को मानते हैं कि जी जो अनाबे इलैया वाले हैं उनकी इत्तबा करो, तो इस वजह से कुरान के हुक्म को साइड पे रखो और यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस फेल की इत्तबा करो, अच्छा ही हमारे लिए फायदा हो जाएगा, हम भी डेंगे मारने, हमें कुरानी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए हमें पुरानी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, इससे ज्यादा अच्छी और कौन सी बात है भाई। नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी अगर गलत बात नजर आएगी। तो चूंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनके बारे में हमें पता है अपने नबी अलैहिस्सलाम से, कुरान मजीद से, अपने बुजुर्गों से कि वो अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी हैं। अब हम तावील देंगे कि भाई ये जो गलत बात नजर आ रही है, ये सिर्फ बजाहिर गलत बात है, हकीकत में गलत बात नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि असल में इसका मतलब ये है कि वो दावा नहीं कर रहे, तहदीस बिन नियमा कर रहे हैं, जिसका कि हुक्म सूरह अलम नशरा के अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया है, वो अम्मा बिन नियमत रब्बिका फहद्दिस, और जहां तक तुम्हारे रब की नियमत का जिक्र है का मामला है, फहद्दिस उसको बयान करो। ठीक है, तो वो अल्लाह के एहसानात का जिक्र कर रहे हैं कि अव्वल अल्लाह ही ने हमें सब्र व तक्वा की तौफीक अता फरमाई, फिर उसके जरिए से तमाम नेमतें अता फरमाई। ला तसरीब अलैकुम अलयौम, यानी आज तुम पर कोई मलामत नहीं, ये अखलाक करीमाना का आला मकाम है कि जालिम को सिर्फ मुआफी नहीं कर दिया बल्कि ये भी वाजे कर दिया कि अब तुम पर कोई मलामत भी नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आयात का मार्फ मसाइल मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। माजरत के 6 मिनट आपसे एक्स्ट्रा ले लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।